हेलो लर्नर्स, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस। तो टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि आपने अपने आसपास देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो आपने देखा होगा अपने काम में बिजी रहते हैं। कोई टेलर है तो वो अपना कुछ सिलाई कढ़ाई के काम में बिजी है, या फिर शॉपकीपर्स हैं तो आपने उनको देखा होगा कि वो सेल कर रहे हैं या ग्रोसरीज सेल कर रहे हैं या डिफरेंट जो भी चीजें हैं मार्केट में आपने देखा होगा जरूर। तो हम क्या देखते हैं कि ये सभी लोग अपनी जो ऑक्यूपेशन है उसको परस्यू कर रहे हैं। क्यों परस्यू कर रहे हैं? क्योंकि वो लाइवलीहुड अर्न करना चाहते हैं, अपने जीने के लिए अपनी जीवनी को वो अर्न करते हैं। तो अपने जो ऑक्यूपेशन है उसमें सक्सेसफुल होने के लिए, या फिर अगर उनका बिजनेस भी है तो उसमें सक्सेसफुल होने के लिए, इन सभी को हमें पता है कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी चाहिए होता है, कुछ फंड्स की जरूरत होती है जिससे कि वो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल खरीद सकें, जरूरी टूल्स खरीद सकें। क्योंकि अगर वो टेलर है तो हो सकता है उन्हें मशीन की जरूरत हो, धागों की जरूरत हो। जैसे कि डॉक्टर है, उनको जरूरत हो सकता है कि कुछ मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत हो सकती है, या फिर कुछ फर्नीचर उनको चाहिए हो सकता है जो उनको उनको उनकी क्लिनिक में उन्हें जरूरी होगा। तो इसी तरह से जो शॉपकीपर हैं उनको ग्रोसरीज की जरूरत हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं जिसके लिए कहीं, हम सभी जानते हैं कि शॉपकीपर्स को, या फिर जो बिजनेसमैन या कोई ऑक्यूपेशन भी परस्यू कर रहे हैं, तो उनको फंड्स की जरूरत पड़ती है। तो फंड्स की अगर हम बात करें तो किसी भी तरह का बिजनेस हो वो, और वो कहाँ कहीं भी किया जा रहा हो, उसके लिए कुछ ना कुछ फंड्स की जरूरत पड़ती है। कुछ लिमिट तक तो वो अपने पास में जो उनके पास अवेलेबल फंड होता है उससे भी अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं कि उससे भी वो अपना बिजनेस चला सकें। लेकिन ऑब्वियसली अगर हम बिग बिजनेस हाउसेस की बात करें तो ये डिफिकल्ट होता है कि ओनर्स जो है वो अपने फंड से बिजनेस को चला पाए। क्योंकि जब हम ओनर्स फंड की बात करते हैं तो उसकी भी एक लिमिटेशन होती है जिसके बियॉन्ड जो ओनर है वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इतना जाहिर सी बात है कि इतना फंड सिंगल पर्सन के पास में नहीं हो पाता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि उन्हें जो है फंड अरेंज करना पड़ता है, जिसको हम कैपिटल भी कहते हैं। तो बिजनेस के लिए उन्हें कैपिटल अरेंज करना पड़ता है। तो आज के इस लेसन में हम यही चर्चा करेंगे कि ऐसे जो भी हमारे प्रश्न जिनका जो हमारे दिमाग में उठते हैं कि जब बिजनेस होता है तो किस तरह से क्या सोर्सेज होती हैं फंड्स की, और किस तरह से वो डिफरेंट सोर्सेज को अरेंज करते हैं, इसी पे आज की हमारी जो चर्चा है वो आधारित रहेगी। तो आज का जो डिस्कशन है इसके बाद आप जो है जान पाएंगे कि बिजनेस फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस फाइनेंस की जरूरत क्या है, हमें क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या हैं, और कौन से डिफरेंट मेथड्स होते हैं जिससे कि हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेस कर सकते हैं। तो आइए अब हम अपनी चर्चा को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि बिजनेस फाइनेंस है क्या। तो जैसा कि हमने बात की कि सभी बिजनेस यूनिट्स को कुछ ना कुछ मनी की आवश्यकता होती है, फंड्स की जरूरत होती है जिससे कि अपने वो बिजनेस को सुचारू रूप से चला सकें। तो चाहे वो एक छोटा बिजनेस हाउस हो या फिर एक लार्ज मैन्युफैक्चरिंग या फिर ट्रेडिंग या ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस हो, मनी जो है हर एक के लिए एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट होता है। हर एक एक्टिविटी के लिए हमें फंड्स की जरूरत होती है। तो मनी जो है, जैसा कि हमने कहा कि हर एक्टिविटी के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत है, तो बिजनेस फाइनेंस की जब हम बात करते हैं तो बिजनेस फाइनेंस से मतलब है कि वो मनी, वो फंड्स जो हमें चाहिए बिजनेस पर्पसेस के लिए, और कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे हम इसको, इस बिजनेस फंड्स को हम रेज कर सकते हैं। तो इन्हीं सबसे पहले तो हम ये चर्चा करेंगे कि बिजनेस को फंड्स की जरूरत क्यों है। व्हाई डज अ बिजनेस नीड फाइनेंस, मतलब बिजनेस को फंड्स की जरूरत क्यों है। तो सबसे पहले बिजनेस को फंड्स की जरूरत होती है कि वो फिक्स्ड असेट्स खरीद सकें। हर तरह का बिजनेस जो भी हो वो कुछ ना कुछ उनके पास में फिक्स्ड असेट्स होते हैं, वो प्रोक्योर करते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है। तो एक बड़े अमाउंट की, एक लार्ज फंड की जरूरत होती है फिक्स्ड असेट्स को खरीदने के लिए। उसके बाद जो दूसरा हमारा पॉइंट है वो है टू मीट डे टू डे एक्सपेंसेस। जो आपके डेली एक्सपेंसेस होते हैं उनकी उनको पूरा करने के लिए भी आपको बिजनेस फंड्स की जरूरत होती है. अब अगर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, वहां रोज काम हो रहा है, उन्हें रॉ मटेरियल परचेज करना है, उसके लिए भी उनको फंड्स की जरूरत है. अगर उन्हें अपने मंथली बेसिस पे अपने जो पेमेंट्स करनी है, इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट करनी है, टेलीफोन बिल्स का पेमेंट करना है, टैक्सेस पे करने हैं, अगर रेंट पे करना है अपनी बिजनेस प्रमाइस का, या फिर अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको वेजेस देना है, सैलरीज देनी है, तो इन सब चीजों के लिए फंड्स की आवश्यकता है. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टू फंड बिजनेस ग्रोथ. तो जैसे कि हम बात करते हैं कि कोई भी बिजनेस होता है, ग्रोथ ऑफ बिजनेस में एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस भी इंक्लूडेड रहता है एक तरह से. तो इस तरह की ग्रोथ को फाइनेंस करने के लिए भी जो बिजनेस यूनिट है उन्हें ज्यादा फंड्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसको एक्सपैंड करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिजनेस ग्रो करे, फ्लरिश करे, तो उसके लिए आपको फंड्स को बिजनेस में इन्वेस्ट करने की जरूरत होती है. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है टू ब्रिज द टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड सेल्स. तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमने गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग में या उसकी प्रोडक्शन में हमने जो भी पैसा लगाया है, उस पैसे को हम तभी रियलाइज कर पाते हैं जब उसकी सेल होती है. तो एक टाइम पीरियड इन्वॉल्व होता है इसमें, एक टाइम गैप होता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आज आपने प्रोडक्शन किया है तो कल ही वो चीज की सेल हो जाएगी और आपको अपना पैसा आप मिल जाएगा. तो जो टाइम गैप होता है प्रोडक्शन और सेल के बीच में, और उसके बाद इवन जब सेल हो भी जाती है, तो एक्चुअल सेल और जब हम कैश रियलाइज करते हैं सेल से, इन दोनों के बीच में भी एक टाइम गैप होता है. इसलिए इस जो ये इंटरवल है, जो ये टाइम गैप है, इसके दौरान एक्सपेंसेस जो हैं वो तो हम वैसे ही अपने करते रहते हैं, खर्चे हमारे वैसे ही चलते रहते हैं, तो इसके लिए हमें फंड्स की जरूरत होती है जिससे कि हम इस टाइम गैप को ब्रिज कर सकें. उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है टू मीट कंटिंजेंसीज. तो फंड्स की जरूरत हमें हमेशा होती है बिजनेस में, कभी भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और कभी कुछ ऐसी दिक्कतें भी आती रहती हैं जो हमने पहले से जिनके बारे में सोचा नहीं है या जिनके बारे में हमने प्लान नहीं किया है. जैसा कि अगर हम एक एग्जाम्पल देखें, कोई एक मैन्युफैक्चरर जो है वो ये सोचता है या उसको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में उन्हें रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो सकती है, तो जाहिर सी बात है कि वो चाहेंगे कि जो रॉ मटेरियल है उसको वो पहले से ही स्टॉक करके अपने पास में बड़ी लार्ज क्वांटिटी में रख लें, ताकि उस टाइम पे ऐसा ना हो कि उनके पास फंड रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए और जो उनके वर्कर्स हैं उनको फिर खाली बैठना पड़े क्योंकि उनके पास काम करने को नहीं होगा. तो इसलिए जो पहले से जो कंटिंजेंसीज हो सकती हैं उसके लिए पहले से आपको तैयार रहना पड़ेगा, और उसके लिए आपको फंड्स की जरूरत होती है. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है टू अवेल बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. अगर आप किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है ये कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कुछ ऐसा टेंडर निकला हुआ है जो जो आपको लगता है कि अगर आप भर देंगे तो आपकी फर्म का बहुत फायदा होगा, उससे अच्छी कमाई हो सकती है, लेकिन टेंडर को भरने के लिए भी आपको कुछ रिक्विजिट अमाउंट ऑफ फी पे करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी आपको फंड्स की जरूरत है. तो मतलब अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं, अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी भी अवेल करना चाहते हैं और उसके लिए अगर आपके पास रिक्विजिट फंड्स नहीं होंगे, तो आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि सामने जो अपॉर्चुनिटी आई हुई है उसका भी आप फायदा उठा सकें. तो इसलिए फंड्स का होना बहुत आवश्यक है. उसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कशन करेंगे, अभी हमने जाना कि बिजनेस फाइनेंस क्या है और बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत क्यों है. तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो हम ये जानेंगे कि बिजनेस फाइनेंस की इम्पोर्टेंस क्या है, क्या जरूरत है हमें बिजनेस फाइनेंस की. तो जैसा कि हमने बार बार बात करें कि फाइनेंस, हम ये समझ रहे हैं कि फाइनेंस जो है वो एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है बिजनेस के लिए, हर बिजनेस के लिए. लेकिन ये सिर्फ एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फाइनेंस को बिजनेस का लाइफ ब्लड भी कहा गया है या लाइफ लाइन भी कहा गया है. क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका, अगर हमारे पास फाइनेंस होंगे तो हम उनको प्रॉपरली डील कर सकते हैं और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को, और कई हद तक हम उसको उसमें अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें कमी ला सकते हैं। तो हालांकि आजकल अगर हम देखें, अगर हम मॉडर्न डेज की बात करें जिसमें आजकल हम रह रहे हैं, तो इसमें फाइनेंस की इम्पॉर्टेंट किस तरह से है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले तो लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए फाइनेंस जरूरी हैं, क्योंकि आज की अगर हम बिजनेस एक्टिविटीज को देखें तो हम सभी जानते हैं कि आज की डेट पे तो एक कंट्री में जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो दूसरी कंट्री में भी अवेलेबल रहते हैं, क्योंकि बिजनेस का जो रीच है वो बहुत ही वाइड हो चुका है। अब वो समय नहीं रह गया है कि एक ही गांव में चीज बनती थी और वहीं यूज हो जाती थी। आजकल एक जगह पे भी जो चीज बन रही है वो देश तो में तो जा ही रही है, उसके अलावा विदेश में भी एक्सपोर्ट हो रही है। तो जो पूरा विश्व है वो एक बड़े मार्केट की तरह बन चुका है, और इस तरह के परिवेश में सरवाइव करने के लिए बिजनेस को एक्सपैंड करने की बहुत जरूरत है। बहुत जरूरी है कि वो जो अपने होराइजन्स हैं उनको एक्सपैंड करें, जिससे कि वो लार्ज स्केल पे जो है फंक्शन कर पाए। तो इस तरह का जो बिजनेस एक्सपेंशन होता है उसमें हमें ज्यादा हमेशा ज्यादा फंड्स की जरूरत पड़ती है, जिससे कि हम अच्छे से जो लार्ज स्केल ऑपरेशंस हैं जो हम चाहते हैं कि देश विदेश में हमारा बिजनेस फंक्शन करे उसको हम केटर कर पाए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अगर जब हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं प्रोडक्शन में यूज करते हैं या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं, तो हर एक बिजनेस के लिए ये एक जरूरत बन चुका है, क्योंकि आजकल जो हम कंपटीशन देखते हैं मॉडर्न डे वर्ल्ड में इतना ज्यादा कंपटीशन हो चुका है। जो हर प्रोसेस जो है वो मॉडर्न मशीनरी की डिमांड करता है, चाहे वो प्रोडक्शन प्रोसेस हो, उसमें इन्वॉल्व्ड इक्विपमेंट्स हो, टूल्स हो, हर किसी में मॉडर्न मशीनरी की और हर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो इसलिए पुराने सिस्टम्स को रीवैम्प करने के लिए और मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न प्रोसेसेस को मैच करने के लिए हमें ज्यादा फाइनेंस की जरूरत है, जिससे कि जो आज का जो वर्ल्ड है, जो हमारे मार्केट्स हैं, उसको हम सक्सेसफुली उस चैलेंज को हम सक्सेसफुली मीट कर पाए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है, वो है प्रमोशन ऑफ सेल्स। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि आज का जो कंपटीशन का जो दौर है उसमें हमारे लिए सर्वाइवल जो है उस फंड्स की जरूरत ज्यादा बढ़ गई है या ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो पैसा है वो हमें प्रोडक्शन के साथ साथ सेल्स प्रमोशन पे भी खर्च करने की बहुत जरूरत है। तो इसमें एडवर्टीजमेंट कॉस्ट इन्वॉल्व रहती है, पर्सनल सेलिंग अगर हम कर रहे हैं या कोई सेल्स प्रमोशनल स्कीम्स हम ला रहे हैं, जैसे कि हमें फ्री होम डिलीवरी करानी है या आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो इन्हीं सब के लिए हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स जो है उनकी हमें जरूरत पड़ती है। तो हमने तीन पॉइंट जाने कि बिजनेस फाइनेंस की आज के दौर में क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले कि लार्ज स्केल ऑपरेशन पे ऑपरेट करने के लिए हमें फंड्स की जरूरत है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के यूज के लिए हमें फंड्स की जरूरत है, और थर्डली सेल्स प्रमोशन के लिए भी हमें फंड्स की जरूरत है। सो लर्नर्स, इसके बाद हम ये जान लें कि टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कौन से होते हैं, क्योंकि जब हम बिजनेस फाइनेंस की बात कर रहे हैं तो ये भी जानना बहुत जरूरी है कि टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कौन से होते हैं। तो जो टाइप या फिर अमाउंट ऑफ फंड्स हमें जो लोग लेते हैं या अवेल करते हैं वो एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस में डिफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, अगर साइज ऑफ बिजनेस जो है वो बड़ा होगा, बड़े साइज का बिजनेस होगा, तो फंड्स की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होंगी। इसी तरह से जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में होती हैं वो ज्यादा होती हैं अगर हम ट्रेडिंग बिजनेस से कंपेयर करें। तो इसी तरह से जो फंड बिजनेस में जो है जो फंड्स लॉन्गर पीरियड के लिए हमें इन्वेस्ट करने हैं, ज्यादा समय के लिए इन्वेस्ट करने हैं, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स में हो सकता है हमें इन्वेस्ट करना हो, या अगर हमें कोई लैंड लेना है या बिल्डिंग खरीदनी है, तो ये इस तरह में जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। और साथ ही साथ कुछ फंड्स ऐसे भी हो सकते हैं जो शॉर्टर पीरियड के लिए हमें इन्वेस्ट करना हो। तो इस तरह से पीरियड के बेसिस पे भी जो हमारे टाइप्स ऑफ फंड्स हैं वो डिफर करते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस को ब्रॉडली थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. फर्स्टली हम कहते हैं जिसको शॉर्ट टर्म फाइनेंस, सेकंड होता है मीडियम टर्म फाइनेंस, और थर्ड को हम कहते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंस. तो ये तीन तरह के फाइनेंस होते हैं. अगर हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस की बात करें तो ये वो फंड्स होते हैं जो हमें अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए चाहिए होते हैं. जैसे कि अगर हमें रॉ मटेरियल परचेज करना है, वेजेस का पेमेंट करना है, रेंट देने हैं, इंश्योरेंस का पेमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स हैं, तो ये जो शॉर्ट टर्म फाइनेंस जो है वो एक साल के पीरियड या उससे कम के पीरियड के लिए होते हैं. तो जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है शॉर्ट पीरियड के लिए, इसको हम वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कहते हैं. तो जो एक वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का जो एक पार्ट होता है वो एक लॉन्ग टर्म नेचर का, जो एक वर्किंग कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट का पार्ट होता है वो लॉन्ग टर्म नेचर का होता है. उसके बाद जो मीडियम टर्म फाइनेंस होते हैं, तो मीडियम टर्म फाइनेंस उस पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं जो एक साल से कम के ना हो, मतलब एक साल से ज्यादा के हों और पांच साल से कम के हों. जैसे अगर हमें कुछ फंड्स चाहिए मॉडर्नाइजेशन के लिए अपने बिजनेस के, या रेनोवेशन के लिए, या कुछ स्पेशल प्रमोशनल प्रोग्राम्स के लिए, तो ये जो है इस कैटेगरी में आते हैं. उसके बाद जो लॉन्ग टर्म फाइनेंस है, मतलब कि जो पांच साल उससे ज्यादा के लिए होते हैं, उसे हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहते हैं. और इस तरह के फाइनेंस में ज्यादातर इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे अगर हम कुछ फिक्स्ड एसेट्स की परचेजेस करनी है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, तो ये सब जो है हमारा फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट होते हैं, क्योंकि ये परमानेंट नेचर के होते हैं. तो सबसे पहले जो शॉर्ट टर्म है उसका पीरियड ऑफ रीपेमेंट जो है एक साल से कम का होता है, और पर्पस होता है जैसे एग्जाम्पल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस, रेंट, इंश्योरेंस एक्सेट्रा. उसके बाद मीडियम टर्म जो है वो एक साल से पांच साल के बीच में हमें उसका रीपेमेंट करना होता है, और इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑन मॉडर्नाइजेशन, रेनोवेशन, या फिर हैवी एडवर्टाइजिंग. उसके बाद जो लॉन्ग टर्म है वो पांच साल से ज्यादा के लिए होते हैं, जैसा कि हमने बात की, जो हम एक्सपेंसेस फिक्स्ड एसेट्स पे करते हैं, लैंड एंड मशीनरी हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकता है, या फिर लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है. इस तरह के और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं. सो टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस के बाद में, जैसा कि हमने यहाँ पे भी डिस्कस किया था, या वर्ड आया था कि वर्किंग कैपिटल, तो ये भी आपके लिए जानना जरूरी है कि ये वर्किंग कैपिटल या फिर फिक्स्ड कैपिटल क्या है. तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कैपिटल होता है बिजनेस का, उसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स के में यूज करते हैं, जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग में करते हैं, फर्नीचर, मशीनरी, रॉ मटेरियल, स्टॉक, फिनिश्ड गुड्स. तो इसमें से कुछ एसेट्स तो ऐसे हैं जो जिसे हम लॉन्गर टाइम के लिए यूज करते हैं, और वो जनरली परमानेंट नेचर के भी होते हैं. तो फिक्स्ड कैपिटल जो है वो हम उस टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स को कहेंगे बिजनेस में जो ड्यूरेबल नेचर की होती हैं, और जिसे बिजनेस जो है एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करता है. तो जो हम कैपिटल इनमें इन्वेस्ट करते हैं फिक्स्ड, हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका परमानेंट यूज होता है बिजनेस में, और इसको हम दोबारा सेल नहीं करते हैं. सो इस सेंस में हम इसे फिक्स्ड कहते हैं. तो ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल होता है. उसके बाद जो वर्किंग कैपिटल होता है वो असेट्स होते हैं जो नॉर्मली या तो कैश के फॉर्म में होते हैं, जैसे कि हमारे पास कैश इन हैंड होता है, या कैश एट बैंक होता है, या फिर उस फॉर्म में होते हैं जिसको जरूरत पड़ने पर हम जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बिजनेस में कभी भी पैसे की जरूरत पड़ती है. तो आपके पास कुछ असेट्स ऐसे होते हैं जिसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि डेटर्स हैं जो आपको पैसा मिलने वाला है, या फिर बिल्स रिसीवेबल हैं, स्टॉक है. तो इस तरह के जो एसेट्स होते हैं इनको हम करंट एसेट्स भी कहते हैं. और वर्किंग कैपिटल जो है वो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए भी जरूरी होता है. इससे मुझे लगता है कि आपको अंतर समझ में आया होगा कि जो फिक्स्ड कैपिटल है या फिर वर्किंग कैपिटल है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है. सो लर्नर्स, अब हमारे लिए ये भी जानना जरूरी है कि जब हम बात करते हैं कि फाइनेंसेस की, तो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, कौन सी ऐसी सोर्सेज हैं जहां से बिजनेसमैन जो है उनको रिक्वायर्ड फंड्स, जो भी वो चाहते हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म फंड चाहें, चाहे मीडियम टर्म, चाहे या फिर उनकी लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स हो, कहाँ से उसका उसको पूरा किया जा सकता है, कौन है जो उनको रिक्वायर्ड अमाउंट प्रोवाइड करेगा और कैसे उन्हें वो मिलेगा। सो आइए जानते हैं कि जो वेरियस सोर्सेज हैं बिजनेसमैन जिनसे मनी अरेंज कर सकते हैं बिजनेस पर्पसेस के लिए, वो कौन सी हो सकती हैं। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो दो सोर्सेस, दो मेन कैटेगरीज हो सकती हैं इन सोर्सेस की, जिसमें बिजनेसमैन जो है वो रिक्वायर्ड फंड्स बिजनेस के लिए उन्हें मिल सके। पहला इंटरनल सोर्सेस और दूसरी जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेस हो सकती हैं। तो आप जानते हैं कि बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले बिजनेसमैन जो है या तो इन्वेस्ट करता है अपने मनी को बिजनेस में, या फिर जो बाहर के लोग हैं आउटसाइडर्स हैं उनसे बोरो करता है, या फिर कई बार दोनों सोर्सेस को यूज करता है, अपना पैसा भी लगाता है और बाहर से भी बोरो करता है। तो जब बिजनेसमैन अपना मनी इन्वेस्ट करता है, जिसको हम ओनर्स कैपिटल भी कहते हैं, और कुछ पार्ट को रिटेन कर लेता है, कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स जो होते हैं उनको रिटेन कर लेता है बिजनेस में, तो उसको जो है हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कहते हैं। ये हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक इंटीग्रल पार्ट होता है और ये एक कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है। लेकिन इस सोर्स की अगर हम बात करें तो इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, इसलिए बिजनेस हाउसेस जो हैं उनको एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस की मदद भी लेनी पड़ती है। तो जो वेरियस एक्सटर्नल सोर्सेस हैं जहां से बिजनेसमैन फाइनेंस ले सकते हैं, वो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, बैंक्स या फिर दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हो सकते हैं, मनी लेंडर्स हो सकते हैं, कैपिटल मार्केट्स से पैसा ले सकते हैं, मैन्युफैक्चरर्स हो सकते हैं, प्रोड्यूसर्स, कस्टमर्स या फिर फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, या फिर कुछ और एजेंसीज भी हो सकती हैं। तो जो स्कोप होता है किस तरह से बिजनेस फाइनेंस को रेज किया जा सकता है, वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि किस तरह का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो फंक्शन कर रहा है। अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें कि अगर सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनके पास जो सोर्सेज होती हैं बिजनेस फाइनेंस की, वो कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि लिमिटेड होती हैं। जैसे कि ओन सेविंग्स हो सकती हैं, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स से वो पैसा ले सकते हैं, मनी लेंडर्स हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स से वो इजी टर्म्स में उनको पैसा मिल सकता है, फाइनेंस कंपनीज हो सकती हैं, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स हो सकते हैं, या फिर रिटेन्ड प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। इस पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें तो उनको भी सेम सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग से पैसा मिल सकता है दोनों को ही। लेकिन जो कंपनी फॉर्म ऑफ अगर बिजनेस फाइनेंस की, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें, तो उनके लिए उनको पैसा लेना है अगर, तो उन्हें या तो कैपिटल मार्केट से लेना पड़ता है, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से उनके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक्स हो सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट हो सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट्स हैं, या लीजिंग कंपनीज हैं, या फिर रिटेन्ड प्रॉफिट्स भी अवेलेबल रहते हैं। ये जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की हमने बात करी, इसके बारे में जो है डिस्कशन हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। जब हम बात करते हैं कि मेथड्स ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस कौन कौन से हो सकते हैं, क्योंकि हमने बात करी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस की, शॉर्ट टर्म फाइनेंस और मीडियम टर्म फाइनेंस की, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि शॉर्ट टर्म फाइनेंस को जब हमें रेज करना है तो उसके लिए कौन कौन से डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं। सो, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस को रेज कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला ट्रेड क्रेडिट होता है। ट्रेड क्रेडिट जो है हम उसको कह सकते हैं कि वह क्रेडिट है जो मैन्युफैक्चरर्स या जो ट्रेडर्स हैं उनको जो है मिलता है, और जो जो रॉ मटेरियल या फिर जो फिनिश्ड गुड्स के जो सप्लायर्स हैं वो इसको दे सकते हैं। जैसे कि अगर हम कोई बिजनेस, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज है, वो अगर गुड्स जो है वो जब भी खरीदते हैं तो उन्हें 30 से लेकर 90 डेज का क्रेडिट पीरियड मिलता है। इसका मतलब ये है कि गुड्स जो हैं वो डिलीवर तो हो जाते हैं, लेकिन पेमेंट जो है, पेमेंट करने के लिए उनके पास 30 से लेकर 90 डेज तक होते हैं। इस पीरियड के एक्सपायरी तक वो अपना पेमेंट करने का उनके पास में टाइम होता है। ये जो क्रेडिट है इससे हम फंड्स तो अवेलेबल नहीं करवा पाते कैश में कि तुरंत हमने फंड दे दिया हो उन्हें, लेकिन वो एक तरह से उनको फैसिलिटेट करता है कि वो परचेज कर सकते हैं इमीडिएट पेमेंट किए बिना, जिससे कि एक उनको मदद मिलती है. और ये जो है एक बहुत ही पॉपुलर सोर्स है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का. उसके बाद जो नेक्स्ट जो हम मेथड की बात करेंगे वो है बैंक क्रेडिट. तो हम सभी जानते हैं जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो शॉर्ट टर्म फाइनेंस देते हैं बिजनेस फर्म्स को, जिसको हम बैंक क्रेडिट कहते हैं. तो ये लोन्स एंड एडवांसेस के फॉर्म में भी हो सकता है, जब कुछ अमाउंट जो है वो बैंक देता है जिसको एक स्पेसिफिक टाइम के बाद में रीपे करना होता है तो उसको हम बैंक लोन कहते हैं. और अगर हम कैश क्रेडिट की बात करें तो बैंक लोन की जब हम बात करते हैं तो इससे कुछ हम सिक्योर्ड एसेट रखते हैं और उसके बिहाफ पे हम ये लोन जो है लेते हैं. उसके बाद अगर हम कैश क्रेडिट की बात करते हैं तो ये एक अरेंजमेंट होता है जहाँ बैंक जो है वो बोरोवर को कुछ एक लिमिट तक पैसा विड्रॉ करने की फैसिलिटी देते हैं, और ये जो लिमिट होती है इसको हम कैश क्रेडिट लिमिट कहते हैं. ये जो फैसिलिटी है ये या तो किसी सिक्योरिटी, कोई गुड्स हमने रखे हों उसके अगेंस्ट हो सकती है, या फिर कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स हों अगर तो उसके बिहाफ पे भी ले सकते हैं. और जिसमें इस केस में जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो जो अमाउंट एक्चुअली विड्रॉ किया गया है उसके ऊपर होता है, और ना कि जो पूरी लिमिट है उसके ऊपर होता है. तो ये एक ध्यान रखने की बात है. उसके बाद जो नेक्स्ट जो टाइप है बैंक क्रेडिट का वो है बैंक ओवरड्राफ्ट है. तो इससे इसमें क्या है, इस फैसिलिटी में बैंक जो है जो उनके डिपॉजिटर्स हैं या जो उनके अकाउंट होल्डर्स हैं उनको अलाउ करता है कि वो कुछ मनी जितना उनके अकाउंट में है उससे एक्सेस में विड्रॉ कर सकते हैं एक स्पेसिफाइड लिमिट के तक. इस फैसिलिटी को जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहा जाता है. और ये जो लिमिट है इट इज प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट वर्दनेस ऑफ द बायर. जो बायर है उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका पास्ट रिकॉर्ड कैसा है. बैंक उनके जो उनका पास्ट रिकॉर्ड है उसको देखते हुए उनको ये फैसिलिटी देती है. तो इसमें जो इंटरेस्ट चार्ज होता है वो भी जो मनी ओवरड्रॉ किया गया है जो जितना अकाउंट में था उतना तो था उससे जो एक्सेस में चार्ज किया गया है ओवरड्रॉन जो मनी है उसके ऊपर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है. और इस केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है वो जो कैश क्रेडिट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है उससे कम भी रहता है. अगर हम देखें कि जो कैश क्रेडिट है और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है दोनों में डिफरेंस क्या है, तो जो कैश क्रेडिट है वो एक अरेंजमेंट है जो क्रेडिट का एक अरेंजमेंट है जो बैंक या फर्म जो है प्रोवाइड करते हैं. उसके लिए हो सकता है कि जो जो कैश क्रेडिट अवेल कर रहा है उसका बैंक में अकाउंट हो या फिर ना हो, लेकिन जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ये प्योरली अकाउंट होल्डर को ही दी जाती है. जैसा कि हमने पहले भी बात करी उसके क्रेडिट वर्दनेस के बेसिस पर ही दी जाती है. उसके बाद एक और जो मेथड होता है वो है फैक्टरिंग. तो फैक्टरिंग जो है एक मेथड होता है जिससे हम शॉर्ट टर्म फाइनेंस रेज कर सकते हैं बिजनेस के लिए. इसमें जो है बिजनेस को बिजनेस जो है वो बैंक से एडवांस मनी ले सकता है, और ये इसके इसमें जो सिक्योरिटी हम देते हैं वो अमाउंट होता है जो हमें अपने डेटर्स से रियलाइज करना है. तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि इस मेथड से जो फर्म है या जो बिजनेस यूनिट है जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्हें सब डेटर्स से अमाउंट कलेक्ट करना है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बैंक के ऊपर शिफ्ट कर देता है. और इसके लिए एक स्पेसिफाइड चार्ज होता है जो बैंक को पे जो फर्म को पे करना होता है, और इससे बिजनेस जो है पैसा एडवांस में बैंक से ले लेता है विदाउट वेटिंग फॉर द ड्यू डेट. और इससे जो एफर्ट्स हैं जो उन्हें डेट्स कलेक्ट करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे उससे भी जो है बिजनेस यूनिट बच जाती है. उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कस्टमर एडवांसेस. तो कुछ कई कई बार ऐसा भी होता है बिजनेसमैन जो है वो अपने कस्टमर्स को इंसिस्ट करते हैं कि वो कुछ एडवांस पेमेंट कर दें. तो ये ज्यादातर तब डिमांड किया जाता है जब ऑर्डर जो है वो ज्यादा क्वांटिटी का हो या लार्ज वैल्यू का ऑर्डर हो, जो गुड्स हैं वो कॉस्टली गुड्स हों. तो कस्टमर एडवांस जो है वो एक तरह से पार्ट पेमेंट हो जाता है, जो भी सेल प्राइस है वो प्रोडक्ट्स का उसका एक पार्ट पेमेंट हो जाता है जो बाद की डेट पे उनके पास में आएगा, और कस्टमर्स ज्यादातर एडवांस पेमेंट करने के लिए मान भी जाते हैं क्योंकि कई बार कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जो बाकी जगह अवेलेबल नहीं है या फिर उनको गुड्स की अर्जेंट जरूरत है, तो इसलिए वो पार्ट पेमेंट करने को या एडवांसेस देने को तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जो दूसरे मेथड्स हैं वो है इंस्टॉलमेंट क्रेडिट है। तो बिजनेस में क्रेडिट इस कंडीशन पे भी दिया जाता है कि उसका पेमेंट जो है उसका जो रीपेमेंट है वो रेगुलर इंटरवल्स पे जो बिजनेस फर्म है वो करती रहेगी या फिर इंस्टॉलमेंट बेसिस पे करती रहेगी, एक स्पेसिफाइड टाइम पे इंस्टॉलमेंट्स पे करती रहेगी। तो जैसा कि हम इंस्टॉल ऑटोमोबाइल्स के केस में भी अक्सर सुनते हैं या फिर लार्ज होम अप्लायंसेस के केस में भी सुनते हैं कि जो परचेजर है वो ज्यादातर एक डाउन पेमेंट कर देते हैं और उस डाउन पेमेंट के बाद में जो बाकी का पैसा होता है वो इंस्टॉलमेंट में पे करते हैं। और अगर अगर जो है किसी भी पॉइंट पे ये लगता है कि जो परचेजर है वो रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या वो डिफॉल्टर हो गए हैं, तो जो प्रीवियस पेमेंट्स हैं जो वो ऑलरेडी कर चुके हैं उसको फोरफिट कर लिया जाता है और जो सेलर है वो पोजेशन भी गुड्स का वापस ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मेथड्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस हैं वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से भी लोन लिया जा सकता है। जो अभी तक हमने मेथड्स जाने जैसे कि फैक्टरिंग, कस्टमर एडवांसेस या इंस्टॉलमेंट क्रेडिट, उसके बाद बैंक लोन्स, बैंक क्रेडिट या फिर ट्रेड क्रेडिट, इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी लोन लिया जा सकता है जैसे कि मनी लेंडर्स हैं, इंडिजिनस बैंकर्स हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं। अगर बिजनेस में कुछ अर्जेंट नीड है तो इस तरह से भी हम फाइनेंस रेज कर सकते हैं या फिर कई बार जो पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं उससे भी लोग मनी रियलाइज कर लेते हैं। लेकिन अगर हम लोन्स लेते हैं किसी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, खासकर इंडिजिनस बैंकर्स से, तो हम देखते हैं कि जो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चार्ज होता है वो नॉर्मली बहुत हाई होता है, इसलिए ज्यादातर जो बिजनेसमैन हैं वो इस तरह का लोन लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं। इसके बाद इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स होते हैं। ये वो डिपॉजिट्स होते हैं जो एक कंपनी जो है शॉर्ट टर्म के लिए करती है दूसरी कंपनी के पास में, तो इस तरह के डिपॉजिट्स को हम इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स कहते हैं। ये ज्यादातर ब्रोकर्स अरेंज करते हैं इसको और ये एक तरह का एक अनसिक्योर्ड डेब्ट है, इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं होती हैं और ज्यादातर इसे सीक्रेट रखा जाता है, इसे पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। तो जो भी इंटरेस्ट पेबल होता है अमाउंट पे वो दे दिया जाता है, और इसके लिए जो है आज के टाइम पे हम देखते हैं तो उसके लिए कोई ऑर्गेनाइज्ड मार्केट अवेलेबल नहीं है जो इस तरह के एक्सचेंजेस को फैसिलिटेट करे। सो लर्नर्स, आज हमने जाना कि फाइनेंसिंग ऑफ बिजनेस में हमने जाना कि फाइनेंसिंग बिजनेस फाइनेंस क्या है, बिजनेस फाइनेंस के की क्या जरूरत है, क्यों हमें जरूरत है, क्या इंपॉर्टेंस है बिजनेस फाइनेंस की, टाइप्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस कौन से होते हैं एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड्स ऑफ रेजिंग शॉर्ट टर्म फाइनेंस।